चैप्टर 10 का काकू वक्रोक्ति अलंकार का एक भेद है, जहां काकू स्वर भेद से किसी के कहे हुए शब्दों का अर्थ पलटकर उत्तर दिया जाए वहां काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, ऐसी युक्तियों में कथन को मार्मिक और प्रभावशाली बनाने वाली अनूठी युक्तियों, कुछ तो शब्द की लक्षणा व्यंजना शक्ति का आश्रय लिया जाता है और कुछ काकू पर्यायोक्ति अलंकारों का। ऐसी उक्तियां गोस्वामी जी की रचनाओं में भरी पड़ी हैं। गोस्वामी तुलसीदास, पृष्ठ संख्या 105। कार्य, दृश्य काव्य में जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए नायक अपने प्रयत्न आरंभ करता है और जिसकी सिद्धि के बाद नायक का कृत्यानुष्ठान समाप्त हो जाता है, उसे कार्य कहते हैं। अपेक्षितम तु यत् साध्य आरंभो यत् निबंधनम्, समापनम तु यत् सिद्धये तत्कार्यम् इति सम्मतम्। साहित्य दर्पण, षष्ठ परिच्छेद। उदाहरण, जैसे दृश्य काव्य का वैसे ही प्रत्येक घटना प्रधान प्रबंध काव्य का एक कार्य होता है, जिसके लिए घटनाओं का सारा आयोजन होता है। जैसे रामचरित में रावण वध, जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 73। नोट, संस्कृत के नाट्याचार्यों में कार्य के स्वरूप निरूपण में पर्याप्त मतभेद है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार जिस उद्देश्य विशेष की दृष्टि से प्रधान नायक, पताका नायक और प्रकरी नायक का कार्य व्यापार चला करता है, उसके लिए जो भी आवश्यक साधन समुदाय है, वह सब कार्य रूप अर्थ प्रकृति के अंतर्गत रहा करता है। प्रधान उपाय तो बीज है ही, किंतु उसका सहायक जो कुछ भी उपाय है, वह सब कार्य रूप ही है। कहना न होगा कि आचार्य शुक्ल का मत उपर्युक्त मत से भिन्न है। ऐसा लगता है कि उनके सामने केवल साहित्य दर्पण कार्य की परिभाषा रही है। कार्यान्वय, यूनिटी ऑफ एक्शन, उद्देश्य की सिद्धि करने वाले कार्य के साथ अन्य घटनाओं का पूर्ण सामंजस्य। उदाहरण, प्राचीन यवन आचार्य अरस्तु ने इसका विचार अपने काव्य सिद्धांत के 8वें प्रकरण में किया है और यह अब भी पाश्चात्य समालोचकों में कार्यान्वय यूनिटी ऑफ एक्शन के नाम से प्रसिद्ध है। नोट, अरस्तु द्वारा निरूपित कार्य संकलन के सिद्धांत को आचार्य शुक्ल भारतीय नाट्य शास्त्रों में निरूपित 5वीं अर्थ प्रकृति कार्य के समकक्ष मानते प्रतीत होते हैं। उन्होंने कार्य के संबंध में आधुनिक अंग्रेजी कवियों काउपर, बन और वर्ड्सवर्थ का हवाला देकर यह भी बताया कि आप कार्य का महत्व होना, जैसा कि प्राचीन आचार्य आवश्यक मानते थे, आवश्यक नहीं है। वैसे आचार्य शुक्ल स्वयं कार्य का महत्व होना आवश्यक मानने प्रतीत होते हैं। काव्यगत सत्य, पोएटिक ट्रूथ, काव्य के माध्यम से व्यक्त होने वाला संभावना मूलक सत्य। उदाहरण, अन्योक्ति द्वारा अव्यक्त परोक्ष या अज्ञात तथ्य की व्यंजना को हम कृत्रिम और काव्यगत सत्य के विरुद्ध समझते हैं। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 63। काव्य, कवि कर्म का काव्य कहते हैं, कवि कर्म को काव्य कहते हैं। कवि का कर्म है प्रत्यक्ष जगत के असीम अनंत रूप सौंदर्य का भावन करना और उसे रमणीय शब्द विधान द्वारा सहृदय तक संप्रेषित करना। व्यक्त जगत के सारे व्यापार काव्य के विषय हो सकते हैं, इसलिए काव्य का लक्ष्य सर्वभूत को आत्मभूत करके उसका अनुभव कराना है। काव्य में हृदय की अनुभूति ही मुख्य होती है। इस अनुभूति को मूर्त करने वाले सभी उपादान साधन मात्र हैं। जीवन और जगत की सच्ची अनुभूति ही काव्य को शक्ति देती है। सहज भाव ही सहृदय पाठक को प्रभावित करते हैं। काव्य प्रकृत लक्ष्य है जगत के पदार्थों के साथ भावों के प्रकृत संबंध का प्रत्यक्षीकरण। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कवि कल्पना शक्ति को साधन रूप में प्रयुक्त करते हैं। उदाहरण, बात यह है कि काव्य शब्द व्यापार है। वह शब्द संकेतों द्वारा ही अंतस में वस्तुओं और व्यापारों का मूर्ति विधान करने का प्रयत्न करता है। अतः जहाँ तक काव्य की प्रक्रिया का संबंध है, वहाँ तक रूप और व्यापार कल्पित ही होते हैं। चिंतामणि भाग 1 पृष्ठ संख्या 244 से 245। काव्यानुभूति, काव्य में व्यक्त अनुभूति जीवन के गृहित रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि का अनुभूति जब मनो जगत में रचनाकार की कल्पना के सहारे मूर्त होकर शब्द के माध्यम से व्यक्त होती है, तब उसे काव्यानुभूति कहते हैं। उदाहरण, काव्यानुभूति एस्थेटिक मोड और स्टेप एक निराली ही अनुभूति है। इस मत के कारण यूरोपीय समीक्षा क्षेत्र में बहुत सा अर्थ शून्य वाद विस्तार बहुत दिनों से चला आ रहा है। चिंतामणि भाग दो पृष्ठ संख्या 51। काव्यानुभूति ही वह प्रधान वृत्ति है जो व्यंजना की प्रेरणा करती है। चिंतामणि भाग दो पृष्ठ संख्या 105। काव्यार्थापत्ति। अर्थापत्ति का तात्पर्य है अर्थ का आक्षेप। जहाँ उक्त अर्थ के आधार पर अनुक्त अर्थ की सहज कल्पना कर ली जाए वहाँ अर्थापत्ति या काव्यार्थापत्ति अलंकार होता है। इस संदर्भ में दंड पूपिका न्याय का उल्लेख किया जाता है। यदि लोहे के दंड में आपूपिका अर्थात पुआ खोस कर रख दिया जाए और दूसरे दिन पुआ मांगने पर कहा जाए कि पुए को कौन कहे चूहा दंड को भी खा गया। यहाँ उक्त अर्थ चूहे द्वारा दंड को खा जाना के आधार पर अनुक्त अर्थ पुए का खाया जाना स्वतः कल्पित कर लिया जा सकता है। अतः ऐसे प्रयोग में काव्य अर्थापत्ति अलंकार मान्य है। उदाहरण, चमत्कार से हमारा तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से है जिसके अंतर्गत वर्ण विन्यास की विशेषता, शब्दों की क्रीड़ा, वाक्य की वक्रता और वचन भंगी जैसे काव्यार्थापत्ति परिसंख्या, विरोधाभास, असंगति इत्यादि में तथा अप्रस्तुत वस्तुओं का अद्भुत तत्व इत्यादि बातें आती हैं। चिंतामणि भाग 1 पृष्ठ संख्या 168। काव्य का नित्य स्वरूप। काव्य के विमर्मस्पर्शी तत्व जिनके अभाव में काव्य का अस्तित्व संभव नहीं है, गुण और रस काव्य के अनिवार्य और नित्य धर्म है। अलंकारों को काव्य का अनित्य धर्म कहा गया है क्योंकि उनके अभाव में भी कविता हो सकती है। उदाहरण, अनूठापन काव्य के नित्य स्वरूप के अंतर्गत नहीं है, एक अतिरिक्त गुण है जिससे मनोरंजन की मात्रा बढ़ जाती है। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 98। काव्य का लक्ष्य। शब्द विन्यास द्वारा श्रोता का ध्यान आकृष्ट करना, भावों का स्वरूप प्रत्यक्ष करना और जगत के नाना पदार्थों के साथ उनके भावों के प्रकट संबंध की व्यंजना करना काव्य का कवि कर्म लक्ष्य माना जा सकता है। श्रेष्ठ कवि अंतिम स्थिति जगत के नाना पदार्थों के साथ भावों के प्रकट संबंध की व्यंजना करना को ही महत्व मानते हैं। उदाहरण, काव्य या कवि कर्म के लक्ष्य को हम क्रम में 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम, शब्द विन्यास द्वारा श्रोता का ध्यान आकर्षित करना। दूसरा, भावों का स्वरूप प्रत्यक्ष करना। तीसरा, नाना पदार्थों के साथ उनका प्रकृत संबंध प्रत्यक्ष करना। मेरी समझ में काव्य का अंतिम लक्ष्य तीसरा है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 89। काव्य दृष्टि। काव्य रचना के लिए विषय चयन करने वाली दृष्टि काव्य दृष्टि संकुचित भी हो सकती है और व्यापक भी। नर क्षेत्र मनु क्षेत्र सृष्टि दोनों पर जिस कवि की दृष्टि जाती है वही सच्चा कवि है। उदाहरण, काव्य का अनुशीलन करने वाले मात्र जानते हैं कि काव्य दृष्टि सजीव सृष्टि तक ही बद्ध नहीं रहती, वह प्रकृति की उस भाग की ओर भी जाती है जो निर्जीव या जड़ कहलाता है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 17। काव्य पद्धति। काव्योचित मूर्त विधायनी चित्रण पद्धति। उदाहरण, जे ही ने सकल जीव सूत ही तब कृपा पात्र जग जा गई। इसमें माया में पड़े हुए जीव की अज्ञान दशा का काव्य पद्धति पर कथन है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 44। काव्य भाषा। कविता में प्रयुक्त होने वाली भाषा सामान्य बोलचाल एवं शास्त्र ज्ञान निरूपणी भाषा से अलग मूर्त विधान में समर्थ लाक्षणिक विशेष वर्ण विन्यास युक्त बिंब ग्रहण कराने वाली भाषा। नोट, आचार्य शुक्ल ने काव्य भाषा की 4 विशेषताओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। प्रथम, काव्य भाषा लाक्षणिक होनी चाहिए और उसमें मूर्त विधान की क्षमता होनी चाहिए। दूसरी, उसमें जाति संकेत वाले शब्दों की अपेक्षा विशेष व्यापार सूचक शब्द अधिक होने चाहिए। तीसरे, उसमें नाद सौंदर्य विधायक वर्ण विन्यास होना चाहिए और चतुर्थ है, उसमें व्यक्तियों के नाम के स्थान पर अवसरानुकूल उसके रूप गुण या कार्य बोधक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। उदाहरण, अगोचर बातों या भावनाओं को भी जहाँ तक हो सकता है कवि स्थूल गोचर रूप में रखने का प्रयास करती है। कविता इस मूर्त विधान के लिए वह भाषा की लक्षणा शक्ति को काम में लेती है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 41। कविता की भाषा में दूसरी विशेषता यह रहती है कि उसमें जाति संकेत वाले शब्दों की अपेक्षा विशेष व्यापार सूचक शब्द अधिक रहते हैं। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 42। तीसरी विशेषता कविता की भाषा में वर्ण विन्यास की है। जिस प्रकार मूर्त विधान के लिए कविता चित्र विद्या की प्रणाली का अनुसरण करती है उसी प्रकार नाद सौष्ठव के लिए वह संगीत का कुछ सहारा लेती है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 46। हमारी काव्य भाषा में एक चौथी विशेषता भी है जो संस्कृत से ही आई है, वह यह है कि कहीं कहीं व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उनके रूप गुण या कार्यबोधक शब्दों का व्यवहार किया जाता है। रस्वी भाषा पृष्ठ संख्या 47। ये बातें एक व्यापक काव्य भाषा के अस्तित्व की सूचना देती है। सूरदास पृष्ठ संख्या 98। काव्य में असाधारणत्व। काव्य में असाधारणत्व दो प्रकार का हो सकता है, काव्य वस्तु में असाधारणत्व और व्यंजन प्रणाली में असाधारणत्व। इन दोनों ही स्थितियों के असाधारणत्व न अनिवार्य है, न अनावश्यक, न आवश्यक। आचार्य शुक्ल के अनुसार भावों का अत्यंत उत्कर्ष दिखाने के लिए ही असाधारणत्व की आवश्यकता होती है। उनका विचार है कि साधारण से साधारण वस्तु भी गंभीर से गंभीर भावों का आलंबन हो सकती है, अतः सर्वत्र असाधारण को महत्व देने की प्रवृत्ति अनुचित है। उदाहरण, काव्य में असाधारणत्व वही अपेक्षित होता है जहां भावों का अत्यंत उत्कर्ष दिखाना होता है। भावों के उत्कर्ष के लिए भी सर्वत्र आलंबन का असाधारणत्व अपेक्षित नहीं होता। साधारण से साधारण वस्तु हमारे गंभीर से गंभीर भावों का आलंबन हो सकती है। प्रसंग प्राप्त साधारण असाधारण सभी वस्तुओं का वर्णन कवि का कर्तव्य है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 102 से 103। काव्यात्मक गद्य प्रबंध या लेख। छोटे छोटे भावपूर्ण गद्य प्रबंध, इसे आचार्य शुक्ल ने गद्य काव्य भी कहा है। उदाहरण, चौथा रूप है काव्यात्मक गद्य प्रबंध या लेख का, चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 159। वह काव्य जो केवल कौतूहल वर्धक उक्ति चमत्कार पूर्ण हो, काव्य न होकर काव्याभास है। उदाहरण, जिसमें भाव का पता देने वाला अथवा भाव जागृत करने वाला कोई शब्द या वाक्य अथवा प्रस्तुत प्रसंग के प्रति किसी प्रकार का भाव उत्पन्न करने में समर्थ अप्रस्तुत वस्तु या व्यापार न हो, केवल दूर की सूझ या शब्द साम्य मूलक विलक्षणता हो, वह उक्ति काव्याभास होगी। जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 170। काव्य भूमि, जीवन और जगत से गृहित मार्मिक तथ्यों को काव्य वस्तु के रूप में रचनात्मक स्वरूप देने वाली भावना की संचार भूमि। उदाहरण, मनोमय कोश ही प्रकृत काव्य भूमि है, यही हमारा पक्ष है। इसके भीतर के वस्तुओं की कोई मनमानी योजना खड़ी करके उसे इससे बाहर किसी तथ्य का, जिसका कुछ ठीक ठिकाना नहीं है, सूचक बताना हमें सच्चे कवि का क्या सच्चे आदमी का काम नहीं समझते। चिंतामणि द्वितीय पृष्ठ 73 से 74। काव्य वस्तु, काव्य में वर्ण विषय के रूप में गृहित वस्तुएं मैटर। आचार्यों के अनुसार संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो काव्य वस्तु न बन सके। कवि किसी भी विषय को लेकर अपनी कल्पना शक्ति से उसे सौंदर्य का सन्निवेश कर सकता है। उदाहरण, रसवादियों ने रस को और ध्वनिवादियों ने काव्य वस्तु को व्यंग कहा है। उनके अनुसार रस की या वस्तु की व्यंजना होती है अभिधा द्वारा, सीधे कथन नहीं। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 96। उदाहरण, इनके जोड़ने वाले वह नहीं जानते कि छायावाद या रहस्यवाद शब्द काव्य वस्तु का सूचक है। अतः जहां काव्य वस्तु में कोई वाद नहीं है, केवल व्यंजना शैली के वैचित्र का अनुकरण है, वहां अभिव्यंजनावाद की नकल है। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 99। काव्य विधान, काव्य रचना, काव्य की शर्तों के अनुसार रचना विधान। उदाहरण, यहाँ पर थोड़ा इसका भी निर्णय हो जाना चाहिए कि इन बाल चेष्टाओं का काव्य विधान में क्या स्थान होगा। काव्य शिष्टता, काव्य मर्यादा शिष्ट जनोचित सुरुचिपूर्ण काव्य रचना। उदाहरण, वेदना की अधिक विवृति हम काव्य शिष्टता के विरुद्ध समझते हैं। हमें तो वेदना का अधिक ब्यौरा पढ़ने पर ऐसा ही जान पड़ता है जैसे कोई भारी रोगी किसी वैद्य के सामने अपने पेट के भीतर की शिकायतें बता रहा हो। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 101।